अगर झाड़ू पर थोड़ा पानी लगा लोगे तो धूल मट्टी नहीं उड़ेगी, समझे?
तुम्हारे मालिक को उस पुल के ऊपर से गिराना चाहता हूँ।
जो तारीख तय हुई थी उसी दिन निकाह होगा, फिर एक साल बाद रुखसती होगी।
क्या मतलब तुम्हारा? मतलब तुम यहाँ अपनी अम्मी के साथ रहोगे और मैं वहाँ?
हाँ बिल्कुल।
कैसे हो सकता है?
क्यों नहीं हो सकता?
मतलब तुम्हें ऐसे लगता है कि मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है?
सहारे की जरूरत नहीं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप यहाँ अकेली रहे। मोहम्मद तो चला गया और मैं
उसे जाना था वो चला गया। जो हो रहा था वही हुआ है। बच्चों को एक दिन जाना ही होता है। माँ बाप के घर पे बच्चों को हमेशा नहीं रहना होता।
अब सब कुछ छोड़ के जाने का फैसला क्यों कर रही हैं?
क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो मेरा सारा घर सुनसान हो जाएगा। शौकत बाजी, मेरा बेटा तेहरान चला गया है। वो यही चाहता है कि दुनिया को कुछ बन के दिखाऊं। उसकी उम्र कम है लेकिन जवान हो गया है। मुझे उसके साथ होना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन वो मेरे साथ रहना चाहती है ताकि मैं अकेली ना रहूं। इस तरह उसका मुस्तकबिल खत्म हो जाएगा। इस तरह इतने चाहने वाले शोहर को वो खो देगी।
बस फिर दो हिस्से अपने पास रखना चाहती।
मैं चाहती हूँ कि ये दो हिस्से उन बच्चों के नाम पर हो जाएं। आप भी कोशिश करें कि शौकत बाजी उनके शोहर उन बच्चों की जिम्मेदारी हासिल कर सके।
सना बाजी,
मेरे वालिद को भी नहीं पहचानती। पुराने उसूल पसंद और समझदार हैं। इस तरह के लोग किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करते, सिर्फ अपनी जात पर भरोसा करते हैं। अगर मैं उनसे ये कहूँ कि तुम उनसे किसी नए प्रोजेक्ट पर बात करना चाहती हो तो बस इतना ही काफी है।
इसे तुम मेरे समय छोड़ दो, मैं उन्हें समझा लूंगी।
साबिर, ये तो बहुत खूबसूरत है लेकिन मैं
कुछ भी नहीं बोलूं। सिर्फ चाहता हूँ कि ये जान लो।
तुम भी कुछ ना बोलो।
सर 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 माफी चाहता हूँ सर, मैं बहुत
ए, क्या हो गया है तुम्हें? क्या कोई जिन तुम्हारे पीछे लग गया है जो इस तरह भागते हुए आए हो यहाँ? क्या हुआ?
वो असल में बाहर साबिर साहब आए हैं।
अच्छा, अगर साबिर यहाँ आ रहा है तो क्या मसला है? क्या कोई जिन देख लिया है या कोई तुम्हें पकड़ने आ रहा है या फिर कोई?
आ जाइए आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान, आइए।
Thank you.
वालेकुम अस्सलाम।
अस्सलाम वालेकुम, मैं परी सीमा शीरजादे हूँ।
तशरीफ रखिए। अब बाग का गरीब मालिक कितने महीनों तक सेब के दरख्तों को पानी देता है, खाद डालता है, खुरपाई करता है, देखभाल करता है, इंतजार में होता है अच्छा सिला मिले, फूल दे, फल दे, इसका फल अच्छा फले। उसके बाद उन्हीं फलों के दरख्तों से उन फलों को ताजा ताजा तोड़ना भी नहीं चाहते, फिर यहाँ मेरे सामने बैठकर घुमा फिरा कर उल्टी सीधी बातें करते हो और मेरे सामने बैठकर मुझे ही बताते हो कि मुझे मेरा काम किस तरह करना चाहिए।
देखिए फिरदौस साहब, मैं असल में आज आपके पास इसलिए आई हूँ।
अब दोबारा नहीं कहना कि आजकल का जमाना। मेरी तो समझ में नहीं आता, जब भी कोई तरीके की बात करना चाहता है, आजकल का जमाना बिल्कुल किसी बम की तरह दिमाग में फट जाता है। देखे मोहतरमा, मेरे सामने कायदे की बात करो ताकि फायदे की बात सुन सको। मुझे नहीं मालूम तुम एक साल से, दो महीने से, दो हफ्तों से मेरे इस बेटे के साथ तहकीक कर रही हो, मीटिंग कर रही हो, क्या क्या कर रही हो, मुझे नहीं मालूम। मेरे इस बेटे में खराबी है, ये दिमाग का फुहड़ है। इसने अपने दिमाग को निकालकर अपनी गाड़ी की डिग्गी में रख दिया है। बगैर दिमाग के जाता है, बगैर दिमाग के आता है, जैसे छुट्टी के दिन खाली टैक्सियां फिरती रहती हैं।
मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर मेरी पेशकश में बुराई क्या है, क्या इसमें कोई बुराई है?
हाँ बुराई है, क्योंकि तुम फल कच्चा तोड़ना चाहती हो। वो टमाटर जो तुमने बाहर देखे थे, वो टमाटर हमें बाग वाले ने 10 रुपए किलो दिए थे, 10 रुपए डब्बे के और लोडिंग के, गोदाम के, बर्फ खाने के, ये सब मिलाकर कितने हो गए?
तकरीबन 20 और हो जाएंगे।
अच्छा, फिर 6 रुपए किलो के हिसाब से दोबारा माल उठाना, फिर से पैक करवाना, फिर से लोडिंग करवाना और कंपनी में लाने के बाद कितने हो जाएंगे?
26 रुपए तकरीबन।
और तुम कह रही हो कि मैं 26 रुपए किलो पड़ने वाले टमाटर को कंपनी भेज दूं कि वहाँ उसका पेस्ट बनाया जाए, तो क्या उसमें मेरा फायदा है और वो सब मेरे लिए पैसा बन जाएगा? एक एक टमाटर से मैं पैसा कमाऊंगा?
बस अगर आपका ये सब हिसाब ठीक हो जाएगा तो सारी दुनिया के लोग ये काम कर रहे हैं वो सब।
हमारी बुराई ये है कि आग से सिर्फ धुआं उठता हुआ देखते हैं, वो लोग कंपनी को बाग के करीब बनाते हैं, पैकिंग करने के पैसे नहीं देते हैं, बर्फ खाने के पैसे नहीं देते हैं, लोडिंग वगैरह के पैसे नहीं देते हैं, फल सीधे कंपनी में चले जाते हैं, एकदम ताजा, खराब नहीं, लोगों की आह और हाय उसके साथ नहीं है, समझी?
मतलब आपने हमारा प्रोजेक्ट रिजेक्ट किया।
तुम्हारा प्रोजेक्ट तो पहले ही से रिजेक्ट था, जब इस कमरे में दाखिल हुई थी तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो ही चुका था। देखो तुम कहीं पर भी जाओ, ये जानना जरूरी है कहाँ जा रही हो तुम, क्यों जा रही हो, किसके पास जा रही हो, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि किस तरह जाना है। अगर कोई भी आकर तुमसे 2-4 बातें करेगा तो फिर तुम उसको एक ही जवाब दोगी, ये आजकल का जमाना नहीं है। सुनो, ये मेरा मशवरा है।
शुक्रिया आपके मशवरे का फिरदौस साहब, मैं चलती हूँ।
तुम्हारा भी शुक्रिया। मोहतरमा उतार चढ़ाओ, ये अपना साजो सामान यहां से उठाकर ले जाओ।
ये आपके पास रहे तो बेहतर होगा।
तुम कहां जा रहे हो?
शायद वो मेरी ही गाड़ी में यहाँ आई है, उसे यहाँ तो नहीं छोड़ सकता।
2 मिनट रुको, मुझे तुमसे जरूरी काम है।
कम से कम उसे गाड़ी की चाबी तो दे दूं ताकि वो बैठ सके। शिरजादे साहबा, शिरजादे साहबा, शिरजादे साहबा, परिसीमा, परिसीमा, तुम 1 मिनट गाड़ी में बैठो, मैं भी वापस आता हूं। जी बोले बाबा जान, क्या काम है आपका मुझसे?
मुझे तुमसे ये काम था कि तुम थोड़ी देर के लिए यहीं रुक जाओ। सिर्फ इसलिए रोक रहा था कि तुम आजूज माजूज की तरह जाते हुए पूरी मार्केट को नजर ना आओ। आखिर तुम्हें क्या हो गया है? पागल हो गए हो? देखो, अगर डूबकर ही मरना चाहते हो तो तुम खुद जाकर डूबकर मर जाओ। साबिर, क्या हो गया है तुम्हें?
कोई और काम तो नहीं है? मैं चलता हूं। ये क्या है?
इसे तुम रखो।
लेकिन किस लिए?
मुझे अब इसकी जरूरत नहीं।
लेकिन क्यों? इस बात का इससे क्या ताल्लुक?
बहुत गहरा ताल्लुक है। जिस शख्स को मैंने आज देखा है और जो तुम्हारा और तुम्हारे वालिद का ताल्लुक है, कोई भरोसा नहीं है कि कल यही शख्स मेरे घर आएगा और कहेगा कि मेरे बेटे ने तुम्हें जो अंगूठी दी वो वापस करो।
ये कैसी बातें कर रही हो परिसी?
ये हकीकत है। मैं तुम्हें हकीकत ही बता रही हूँ। साबिर, तुम अपने वालिद के बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकते। मेरी सारी जिंदगी में इतनी बेइज्जती नहीं हुई। तुम्हारे वालिद के जो दिल में आया उन्होंने मुझे कह दिया। वो मेरी बेइज्जती किए चले जा रहे थे और तुम वहाँ बैठे तमाशा देख रहे थे कि मेरी बेइज्जती किस तरह हो रही है। तुम ये बात क्यों नहीं मान लेते हो साबिर? तुम्हारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। सब कुछ वही है, सब कुछ उनके हाथ में है, सब मालो दौलत भी उन्हीं का है। तुम तो अपने वालिद की इजाजत के बगैर सांस तक नहीं ले सकते हो। जितना अच्छा मैं सोच रही थी अब वो सब खत्म हो चुका है। मैं बहुत खुश थी। मैं और तुम अब बिल्कुल साथ नहीं रह सकते। ना हमारा कोई एग्रीमेंट है और ना ही हमारा आपको
ये बातें मत करो परिसीमा।
अब कुछ मत बोलो, सब कुछ खत्म हो चुका है। बस अब एक एहसान करो, मुझे घर छोड़ दो और फिर तुम्हें खुदा हाफिज है। और मेहरबानी करना कि बाद में ना मुझे SMS करना, ना मुझे फोन करना और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करना।
ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी।
अस्सलाम वालेकुम। एक टैक्सी मंगवा दीजिए फौरी।
जी ठीक है।
अस्सलाम वालेकुम। आप फिर अंधेरे में बैठे हुए हैं। कितनी सिगरेट्स पीते हैं आप?
अब तुम क्या करना चाहती हो?
कुछ नहीं।
जैसा कि तुमने बताया, तुमने उसको छोड़ दिया और वो चला गया।
वो बेचारा कहीं भी नहीं जाएगा।
मुझे लगता है तुमने उसको कुछ ज्यादा ही सुना दी है। मेरे ख्याल से तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था।
वो बुड्ढा किसी भी तरह से नहीं मान रहा है, पत्थर की तरह सख्त है, कोई भी तरीका उस पर कामयाब नहीं हुआ। और फिर उसका दिमाग बहुत ही तेज है, बहुत ज्यादा चालाक है। अब सिर्फ साबिर ही बचा है। अगर हमें कुछ करना है तो सिर्फ साबिर ही के जरिए हो सकता है।
मैं इस काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहता हूं। नहीं चाहता कि वो लड़का तुमसे इतना दूर हो जाए कि फिर तुम उसको वापस लाने पर मजबूर हो जाओ।
वो नहीं जाएगा, वो कहीं भी नहीं जाएगा।
अनीस साहिबा को मैंने बेड पर लिटा दिया है। माशाल्लाह से उनका वजन आजकल दिन ब दिन बढ़ रहा है। बाबा नीचे खाना खा रहे हैं, आप नहीं चलेंगे?
मुझे खाना नहीं खाना है।
लेकिन मुझे बाबा कह रहे थे
तो के... कहने दो। मैं कह रहा हूँ कि खाना नहीं खाऊंगा, भूख भी नहीं है मुझे। हो सके तो तुम भी कभी इंसानों वाले कपड़े पहन लिया करो।
लेकिन इसमें क्या खराबी है बताएं?
ऐसे होते हैं? क्या बात है, इस घर में क्या मासी और खाना पकाने वाले नहीं है? किस लिए हमेशा तुमसे सब्जी और गोश्त की बदबू आती है? कब समझोगे तुम कि इस घर की बहू हो तुम, ना कि कोई नौकरानी?
माफ करिएगा।
माफी माफी माफी, 20 साल से मैं तुम्हारे यही अल्फाज सुनता आ रहा हूँ। 20 साल पहले जैसी थी आज भी वैसी हो तुम। गलती तुम्हारी नहीं है, सब हशमत फिरदौस की है जिसने तुम जैसी को मेरे लिए पसंद किया था। तुम सुधरने वाली नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। तुम्हारी फितरत यही है, तुम्हारी आदत यही है, तुम कभी मालिकन बन ही नहीं सकती। क्या फायदा इन सब बातों का? क्या अब तक कोई फायदा हुआ है?
अच्छा साबिर साहब, आप मेरी वजह से बिल्कुल भी परेशान ना हुआ करें। नीचे बाबा और बच्चे खाना खा रहे हैं। मैं अभी यहीं आपके पास बैठ जाती हूँ ताकि आपको अकेलापन महसूस ना हो।
मैं अनीस के कमरे में जा रहा हूँ, तुम जाओ नीचे चली जाओ। सबको देख रही हो अनीस? अपने ही घर में मुझे अगर एक पल का भी सुकून चाहिए होता है तो मैं तुम्हारे कमरे में आकर पना लेता हूँ। जहन्नुम भी शायद बिल्कुल इसी तरह का होता होगा, बिल्कुल हशमत फिरदौस के घर और घरवाले की तरह का। हेलो, काटना नहीं परिसीमो, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे आज रात तुमसे मिलना है, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। मैं 10 मिनट के लिए तुम्हारे साथ कहीं जाना चाहता हूँ ताकि अपने दिल की बात तुमसे कर सकूँ। मैं तुम्हें किसी भी सूरत नहीं छोड़ना चाहता परिसीमा, जो भी कहोगी मैं करूँगा, जो कुछ भी, बस आज रात 10 मिनट के लिए मुझसे मुलाकात कर लो। शुक्रिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैं बस अभी निकल रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम।
क्या काम है बताओ?
पहले बैठ जाओ।
देखो साबिर, हमने आपस में बात करके देख लिया।
तुमने अपनी बात की है, मैंने नहीं।
हाँ ठीक है, मैंने अपनी बात कर ली है और मैं उसी पर कायम हूँ। देखो, हम दोनों के रास्ते अब अलग अलग हैं। मेरे ख्यालात इस बारे में बिल्कुल अलग थे। अब सोच रही हूँ गलती हो गई है, माफ कर देना, माफी चाहती हूँ। अब इससे ज्यादा हम साथ नहीं चल सकते।
इतनी आसानी से?
ज्यादा मुश्किल भी नहीं।
लेकिन मेरे लिए मुश्किल है।
वो तुम्हारी जाती परेशानी है, तुम खुद हल करो। मैं
एक मिनट पहले मेरी बात सुन लो परिसीमा, जरूरी नहीं कि कहो बहाना बना रहा हूँ। ये भी कहने की जरूरत नहीं कि फजूल बोल रहा हूँ। नहीं, जो कुछ भी कह रही हो ठीक है। सच पूछो तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कम से कम 30 साल बाद तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। तुम ठीक कह रही हो, मेरा अपने वालिद की जायदाद पर कोई हक तो है ही नहीं, लेकिन ये 30 साल मुझ पर सदिया बनकर गुजरे हैं। 30 साल, तुम्हें यकीन नहीं आएगा, लेकिन मैं अभी क्या हूं? कुछ भी नहीं। और फिरदौस साहब के लिए मैं सिर्फ एक काम करने वाला नौकर बन के रह गया हूं। इसी वजह से तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा हूं, तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। मेरा मकाम वो नहीं जो अभी मेरे पास है।
अच्छा तो ठीक है, अब यही मकाम है। तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम्हारे चीखने और चिल्लाने से अब कुछ भी नहीं हो सकता। साबिर, आखिर अब तुम क्या करना चाहते हो?
मैं बस अपना हक चाहता हूँ। मैं अपना वो सब माल जो मेरे वालिद ने गस्प करके रखा हुआ है वापस लेना चाहता हूँ। चाहता हूँ 30 साल की नौकरी की कीमत वसूल कर लूँ।
लेकिन तुम करना क्या चाहते हो
मुझे बताओ? जो तुम बता रही थी कि वकालतनामा और सर्टिफिकेट बनाता है, अभी वो शख्स मौजूद है?
हाँ मौजूद है।
मैं उससे मिलना चाहता हूँ, एक वकालतनामा बनवाना है हशमत फिरदौस की तमाम जायदाद के लिए।
उनकी तमाम जायदाद के लिए?
हाँ, उनकी तमाम जायदाद के लिए।
अब हुई ना बात, अब तुम वैसे ही बन रहे हो जैसा तुम्हें होना चाहिए।
बस फिर पहन लो इसे।
अभी नहीं, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, अभी तो तुमने कुछ भी नहीं किया है। जब हशमत फिरदौस का सब कुछ तुम्हारे नाम हो जाएगा, फिर मैं कहूँगी कि तुम वही बन गए हो जो तुम्हें बनना चाहिए था। साबिर, सारी मालो दौलत,
उनकी सारी मालो दौलत सिर्फ मेरी हो जाएगी, बिना कुछ किए बगैर।
जाओ जाकर कार लेकर आओ, जब तक मैं ऊपर से आता हूँ।
जी ठीक है जनाब।
हाँ फिर?
कुछ नहीं फिरदौस साहब, उसने मुझे काम से निकाल दिया बस।
देखो सभी, शमशाही साहब बिल्कुल ऐसे नहीं है कि बिला वजह अपने कारीगरों को काम से निकाल दे। जरूर तुमने कुछ किया होगा, कुछ कहा होगा, कोई तो बात है, वरना शमशाही साहब बिला वजह अपने कारीगर को क्यों निकालेंगे?
फिरदौस साहब मैं सिर्फ आपके पास उम्मीद लेकर आया हूँ।
तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो?
सर मैं तो पैसे लेने के लिए आया था।
सुनो, पैसे बच्चे की पैदाइश के लिए चाहिए, ना कि किसी शादी के लिए चाहिए, समझे?
ठीक है सर, आप फिक्र नहीं करें।
फिरदौस साहब वो गलत सोच रहा है, कह रहा है कि उनके पैसे गुम हो गए हैं। अब आप ही मुझे बताएं कि इसमें मेरा क्या कसूर है, और बाकी चार अफराद मार्केट में मौजूद थे, अगर उन्होंने मुझे मार्केट से निकाल दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आप उनसे सिफारिश कर दें फिरदौस साहब, वो आपकी बात बहुत मानते हैं। फिरदौस साहब मेरा ख्याल कीजिए।
अच्छा ठीक है, तुम शमशाही के पास मार्केट में जाओ, मैं उससे बात कर लूंगा।
फिरदौस साहब वो घर जा चुके हैं, मैं आपको उनका फोन नंबर देता हूँ, आप उनसे बात कर लें।
सुनो, ये बातें टेलीफोन पर नहीं होती। तुम अभी जाओ, हफ्ते के दिन आना, मैं तुम्हारे साथ मार्केट जाकर उनसे बात कर लूंगा।
हफ्ते में तो अभी बहुत टाइम है फिरदौस साहब।
क्या मैं आ सकता हूँ सर?
हाँ बोलो, क्या है? ये सब क्या है?
ये मार्केट के पैसे हैं सर, सब जमा करके लाया हूँ।
तुमने इसे बैंक में क्यों नहीं भिजवाया?
आज हाफ डे है सर, इसलिए बैंक जल्दी बंद हो जाते हैं।
अब मैं इन पैसों का यहाँ क्या करूँगा? 10 अफराद मार्केट में मौजूद हैं, तुम सब लोगों के पास एक मक्खी जितनी भी अकल नहीं है। अब मेरे सर पर किस लिए खड़े हो? सुनो, जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें भी संदूक में डाल दूंगा, ताकि हफ्ते की सुबह तक तुम इन पैसों पर सांप बनकर बैठे रहो। जाओ यहां से। हफ्ते के दिन आना, फिर शमशाही से जाके बात करेंगे।
जी साहब, मैं चलता हूं, खुदा आपके रोजगार में बरकत दे।
ये दोनों चीजें ले जाके साइड पे खड़ी करना, अभी और भी सामान आएगा।
अच्छा फिरदौस साहब, मैं चलता हूँ।
सुनो अफलाकी।
जी।
कल सब लोगों को बता देना, पैसे दुकानों पर ना रखें, जो भी पैसे हो उन्हें फौरन बैंक में जमा करवा दिया करें। आज भी पैसों का ढेर मेरे कमरे में लाया गया था।
जी फिरदौस साहब, पहले कह चुका था, दोबारा कह दूंगा, मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज।
सुनो रुस्तम खान।
जी जी बोले फिरदौस सर, मैं सुन रहा हूँ।
वो नया लड़का नजर नहीं आ रहा?
वो लड़का यही है सर, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। मोहम्मद इधर आओ, तुम्हें फिरदौस साहब बुला रहे हैं।
जी बोले।
कहीं घूमने गए हुए थे?
नहीं जनाब, मैं वहां की सफाई कर रहा था।
क्या आज रात तुम यहीं रुकोगे?
जी बिल्कुल।
अच्छा ठीक है, ये रुस्तम अभी यहीं पर है, जब तक तुम जाकर अपने खाने पीने का सामान लेकर आ जाओ, फिर अंदर आकर मार्केट को अंदर से ताला लगा देना। हफ्ते की सुबह तक यहीं पर रहना, बाहर आना जाना, घूमना फिरना, ये सब काम बिल्कुल नहीं करोगे, समझ गए?
जी ठीक है।
तुमने भी सुन लिया ना, जब तक वापस ना आ जाए तुम यहीं रुको।
जी मैं समझ गया।
खुदा हाफिज सर। रुस्तम भाई, मोहम्मद भाई, खुदा हाफिज।
सुनो, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे पैसे थे, मुझसे तो देखा भी नहीं जा रहा था।
जबी भाई, एक बात कहूँ, नाराज तो नहीं होगे? तुम मुझे इस काम में ना घसीटो और खुदा तुम्हारी भी खैर करे।
तुमने पहले कभी कोई काम नहीं किया? तुमने पहले भी बहुत से काम किए हैं, तुम्हें इस काम में मेरा साथ देना होगा।
फिर क्या होगा?
अब मुझे फजूल में बेवकूफ मत बनाओ। ओहो, अगर आज रात ये काम हो जाए तो मेरे सारे मसले हल हो जाएंगे।
जबी भाई, क्या ये तय नहीं था कि तुम हफ्ते को शमसाई के पास फिरदौस को लेके जाओगे ताकि वो तुम्हारी काम की बात कर सके? हा?
लानत भेजो शमसाई पे भाई। अभी तो मैं उन्हीं से बात करने जा रहा था, लेकिन जब तक लॉकर में इतने सारे पैसे मौजूद हैं तो मैं तो शमसाई की शक्ल भी नहीं देखूंगा। जाफर, चलो उस लॉकर को तोड़ देते हैं और भाग जाते हैं।
जबी भाई, मैंने अपनी माँ से वादा किया है।
कैसा वादा?
उनसे वादा किया है कि मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा, और वो बूढ़ी माँ भी मेरे लिए यही सोच के दुआ कर रही है कि मेरा काम ठीक चले।
अच्छा, कम से कम 7-8 लाख रुपए उस लॉकर में मौजूद हैं जो कि हमारा इंतजार कर रहे हैं, और हमारे जाफर साहब को अपनी माँ की दुआओं का इंतजार है। ठीक है,
क्या कह रहे हो? 7-8 लाख रुपए?
शायद इससे भी ज्यादा, बता रहा हूँ, इतने सारे पैसे थे, और वो भी एक ऐसा लॉकर जिसको खोलना तुम्हारे बाएं हाथ का काम है ना? बोलो अब क्या हुआ?
सोच रहा हूँ जबी भाई, अम्मी जान से वादा किया है कि कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन उस वादे में 7-8 लाख रुपए की बात नहीं हुई थी।
वाह क्या बात है। अच्छा आप सुनो।
हाँ भाई, नजी आ रही है।
हाँ तो
उस लड़के का क्या होगा, वो जो उधर मार्केट में सोता है, उसका नहीं सोचा तुमने? उसका क्या करोगे?
जी हाँ, सब ठीक चल रहा है, काम भी ठीक चल रहा है, मुझसे बहुत ज्यादा खुश हैं, और अभी एक नई जिम्मेदारी मुझे मिल गई है। जी, वो क्या कहते हैं, मैं तमाम अकाउंट्स और फाइनेंस डिपार्ट का इंचार्ज भी बन गया हूं। जी जी, पैसा तो यहां बहुत होता है, कुछ मशीनें, अहम कागजात, बहुत बहुत ज्यादा सामान होता है। अच्छा, आप कैसी हैं? हबीब के बहन भाई कैसे हैं? खुदा का शुक्र है। कैसा प्रोग्राम? अरे बताएं तो अम्मी जान। अच्छा चलें, आपकी मर्जी, मुझे भी आपकी बहुत याद आती है। ठीक है, नाज़गुल को मेरा सलाम कहिएगा। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।
कोई यहां पर है क्या?
मैं तो सोच रहा था यहां पर कोई भी नहीं होगा। यहां आओ, आओ। नमक है? नमक? हम आलू बना रहे हैं। यू हैव सॉल्ट?
नहीं है।
ठीक है, क्या तुम हमारे साथ आलू खाओगे, भुने हुए?
खाना खा चुका हूं।
खाना नहीं है, आग के पास बैठकर 2-4 आलू खाएंगे, बड़ा मजा आएगा, आ जाओ बाहर।
नहीं शुक्रिया।
क्या हुआ मेरे भाई, अकेले अंदर क्या करोगे? लग रहा है जैसे जंगल में जानवरों के डर से डर कर बैठे हुए हो। बाहर आ जाओ, हमारे पास सब है।
मैं अब जाके सोऊंगा। शब्बा खैर।
अरे देखो कैसा डरपोक है ये।
ये लोग शहर के लोगों से डरते हैं, ये समझते हैं कि हम जैसे इन्हें खा जाएंगे। छोड़ो भाई, जाने दो, हम नमक किसी और से जाके ले लेंगे।
बहुत डरते हैं ये लोग।
हाँ वाकई डरते हैं।
वाह क्या बात है, देखो आ गया। हाँ आ जाओ, खुश आमदीद, खुश आमदीद जवानों की महफिल में। अंदर ऐसा क्या है जो खुद को बंद करके रखा हुआ है? जाओ तुम जाकर देखो चौकीदार के पास नमक है क्या, कहो हमारा मेहमान आया हुआ है।
वाह 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 वाह, मीठे आलू, वाह 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 वाह।
देखो जाफर आलू जल ना जाए।
हाँ हाँ नहीं जलेगा भाई, बेफिक्र हो जा।
देख के भाई।
हाँ हाँ नहीं जलेगा, देख देख जबरदस्त बन रहा है। हाँ बस हो गया हो गया।
पहले निकाल के तुम इस भाई को दो। क्या नाम बता रहे थे तुम अपना, क्या नाम था वो?
अभी तक बताया नहीं है।
तो चलो अब बता दो, कोई राज है क्या? बताओ।
नहीं कोई राज नहीं है, मेरा नाम मोहम्मद है।
लाओ पहले मेहमत भाई को दो।
हाँ हाँ ये लो
मोहम्मद
मोहम्मद ये लो भाई मोहम्मद। हाँ, आराम से
देख के
आराम
से जाए।
हाँ अरे बहुत गर्म हो रहा है भाई।
मुझे दो।
हाँ, ये लो जाफर।
अच्छा, आराम ये से, वाला
आराम से। देख के आराम से।
चलो ठीक है बस। हाँ बहुत शुक्रिया।
मुझे तो इसे देखकर मुंह में पानी आ रहा है, इसे थोड़ा सा और पका लो।
बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा।
किसी और शहर से हो?
हाँ
बहुत बार तुम्हें देखा है, मार्केट के बाहर झाड़ू लगा रहे होते हो। तुम जवान हो, तुम्हें शर्म नहीं आती झाड़ू देते हुए?
मेरा काम है वो।
काम तो है मगर काम इंसान की बराबरी का होना चाहिए। अगर तुम्हें झाड़ू देनी थी तो तुम अपने ही शहर में झाड़ू दे सकते थे। तेहरान एक खास जगह है। कैसी जगह? जहां लोग कुछ बनने के लिए आते हैं और तुम वहां से सिर्फ झाड़ू देने के लिए यहां पर आए हो। शाबाश है भाई तुम्हें। किसी ने फिरदौस साहब से सिफारिश की है?
नहीं।
मतलब बस तुमने आकर नौकरी मांगी और उन्होंने रख लिया?
हाँ और क्या, मुझे काम चाहिए था, उन्होंने कहा ये काम है, मैंने कहा ठीक है।
उसने कहा झाड़ू लगाना आती है, उसने कहा हाँ और शुरू हो गया।
जाओ। अच्छा ये बताओ तनख्वाह कितनी देता है?
पता नहीं है, कहा काम करो फिर बताओ।
मतलब पहले तुम झाड़ू लगाओगे फिर वो तुम्हें तनख्वाह का बताएगा।
कह रहे थे काम करो, देखूंगा कैसा काम कर रहे हो फिर तनख्वाह बताऊंगा।
खामोश रहो, उसकी बात सुनने दो। काम करो फिर बताएगा, मतलब उन्होंने झाड़ू देना तुम्हारे लिए इम्तिहान रखा है। तुम बहुत बेवकूफ हो, तुम्हारे जैसे जवान इस शहर में ऐसे भी हैं जिनके पास गाड़ी भी है। कितनी उम्र है तुम्हारी?
तुम अपना बताओ, 20 लाख की कार तुम्हारे घर पर है क्या?
मैं इस काबिल हूं और मैं ये कर भी सकता हूं, लेकिन अभी किस्मत खराब है। वो क्या कहते हैं जो सर पर आकर बैठ जाता है और
गोल्डन चांस।
हाँ वही गोल्डन चांस। जब गोल्डन चांस आता है तो किस्मत खुल जाती है और तुम्हारे जैसा आदमी भी खुशहाल हो जाता है। ए मेरे गोल्डन चांस, ए मेरे खुदा, जो चांस तुम्हें मिला है अगर मुझे मिल जाता तो। तुम्हारे पास मौका है पर हिम्मत नहीं है, मेरे पास हिम्मत है पर मौका नहीं है, हमारा फर्क बस यही है।
अभी तो तुम कह रहे थे कि झाड़ू देना मेरे मायार के मुताबिक नहीं है।
झाड़ू देना तुम्हारा काम नहीं है और ना ही तुम फिरदौस साहब के मार्केट में काम करने के लायक हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर आज रात मैं तुम्हारी जगह होता
तो फिर
कुछ नहीं, जाने दो बस।
अरे जमी भाई बता तो दो इसको, कोई परेशानी थोड़ी है, वैसे भी इसको बताना कोई गुनाह थोड़ी होगा।
क्या मालूम होना चाहिए?
कुछ नहीं। जानते हो आज रात फिरदौस साहब की मार्केट के कमरे में कितना पैसा है? 4, 5, 6, 7, हो सकता है इससे भी कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा।
हाँ तो?
तो फिर देखो भाई, ये पूछ रहा है तो फिर ये पागल हो गया है। वो गोल्डन चांस यही है भाई। मेरे उस्ताद शमसाई का लॉकर हमेशा हम जैसे लोगों के लिए ही खुला है, उसे खाली कर दो और सब सेट। आज रात जुमे की रात है और लॉकर में इतने सारे पैसे रखे हुए हैं और तुम पूछ रहे हो तो फिर।
बैंकों में भी बहुत पैसा होता है।
होता है लेकिन बैंक में चौकीदार होता है, कैमरे लगे होते हैं, उसका लॉकर भी मजबूत होता है, बंदूक होती है, अलार्म होता है। फिरदौस साहब के लॉकर के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम ही हो। देखो अगर आज रात तुम हशमत फिरदौस के लॉकर को खाली कर दो और यहां से भाग जाओ तो बताओ क्या हो जाएगा। मेरी बात सुनो, ना जान ना पहचान, ना कोई गारंटी, ना कोई जमानत, कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे तुम्हें कोई पकड़े। अगर कुछ बनना चाहते हो तो ये तरीका आसान है, इन पैसों को किसी काम पर लगा देना और 2-3 साल बाद जब ये पैसे डबल हो जाएं तो इन्हें वापस कर देना। मतलब अगर हराम और हलाल समझते हो तो ये पैसे उन्हें वापस कर देना। क्या?
अरे वापस कर देना।
तुम्हारे आलू खिलाने का शुक्रिया।
सब बता दिया, अब जाओ रोको उसे।
कुछ नहीं होता। सुनो मोहम्मद भाई, ये जाफर ताला खोलने में बहुत माहिर है, 3 सेकंड में लॉकर खोल देगा। इतनी देर में हम अपना काम कर लेंगे। कुछ ऐसा तुम हमें दोगे क्योंकि हमने ये सब तुम्हें बताया है। मैं तुम्हारे लिए टिकट खरीद लेता हूँ, बस अड्डे जाओ और गायब हो जाओ। 50-50 बोलो।
जाके सो जा।
देखो भाई मेरी बात मान लो, हर रात एक जैसी नहीं होती। सिर्फ आज रात पैसा लॉकर में है, काफी सालों के बाद ऐसा मौका आता है। तुम्हारे इस काम से हम सब कुछ बन जाएंगे मोहम्मद भाई, पागल मत बनो। जैसा तुम कहोगे हम वैसा ही कर लेंगे, बस
जाओ अपना काम करो।
दफा हो।
देखो मोहम्मद भाई, आज तुम इजाजत दो या ना दो, मैं तो लॉकर खाली कर ही रहूंगा। अब जो कर सकते हो कर लो।
अरे अरे समीर भाई,
तुमसे कहा भी था तो मेरी बात मान लो, मगर तुमने नहीं मानी। अब तो मैं पैसे लेकर ही जाऊंगा।
छोड़ दो उसे, सभी भाई निकलो। छोड़ो उसे,
मैंने कहा निकलो यहाँ से। सभी भाई
छोड़ो, सभी भाई छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे,
बाहर आ जाओ,
छोड़ो मुझे।
अपनी शक्ल गुम करो यहाँ से।
सभी भाई, सभी भाई आप ठीक तो हो ना?
चले जाओ
सभी भाई।
अच्छा, मैंने कहा छोड़ो मुझे,
छोड़ दो सभी भाई, सभी भाई छोड़ दो, सभी भाई, सभी भाई
ये क्या कर रहे हो? सभी भाई
छोड़ो मेरा हाथ।
सभी भाई नहीं, सभी भाई
सभी भाई ये क्या कर दिए सभी भाई आपने? आपने बर्बाद किया सभी भाई।
भागो यहाँ से।
क्या मेरा अल्लाह,
मैंने कहा भागो यहाँ से।
सभी भाई ये तुमने क्या कर दिया सभी भाई? सिपाही आ गए सभी भाई, सभी भाई
भागो, जाफर भागो, भागो।
आगे मत आना, आगे मत आना, वहीं रुक जाओ। किसी को आगे आने की इजाजत नहीं है।
डरो नहीं भाई, हम आपकी जान बचाने आए हैं।
कह रहा हूं आगे नहीं आना।
हाँ हाँ ठीक है ठीक है।
एक फोन कर दो, एक फोन कर दो रुस्तम।
ठीक है मैं फोन कर,
या फिर फिरदौस को।
ठीक है, तुम घबराओ नहीं,
जब तक वो नहीं आएंगे मैं अंदर आने नहीं दूंगा।
हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है,
जल्दी से फोन कर दो।
नहीं ठीक है, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ।
فراموش کن
فقط من، فقط تو، فقط من و تو میارزی هم یه شب زندگی بی تو رو باید قیدشو میزدم فقط من، فقط تو، فقط من و تو میارزی هم یه شب زندگی بی تو رو باید قیدشو میزدم نبودی ببینی چقدر زمان بی تو غمگین گذشت تو رویای من غم نبود ولی تلخ و شیرین گذشت نبودی ببینی عذاب چطور میکشه آدمو باید از یه جا رسیدم به جایی که عشق نبودش یکم بود شد زمین زیر پام خالی و یه آن زندگی دود شد خوشی رفت و شادی نمود دلم شور فردا زد گذشته برام تازه شد مثل داغ روزای بعد فقط من فقط تو فقط من و تو میارزی به هم یه شب زندگی بی تو رو باید قیدشو میزدم نبودی ببینی چقدر زمان بی تو غمگین گذشت تو رویای من غم نبود ولی تلخ و شیرین